તારીખ 28/3/1991 પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈ દ્વારા પાવાપુરીમાં થયેલ તત્વચર્ચા સળંગ નંબર 3
अगर जिसको आत्मरस उस वक्त नैमित्तिक रूप से इस शब्द के निमित्त से निमित्तिक रूप में अगर आत्मरस पैदा हुए तो एक करंट पैदा हो जाता है, झंझनाती आ सकती है कि आत्मा ये शब्द में क्या होता है। तो ऐसे यानी ये एक वचन में अनंत आगम भरा है, हमें मूल्यांकन नहीं हुआ है, सही महिमा नहीं आई है। सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, तो पद है
ये दो ग्रंथि का पद है, दो ग्रंथि का पद है, स्तुति है,
स्तुति
है, दो ग्रंथि
की, दोनों तरह की स्तुति है। सकल ये ज्ञायन ज्ञायक आत्मा है, सकल ये को जानता है, तदपि अपने निज आनंद के रस में लीन डूबा हुआ ही रहता है। ये इसका भाव है कि भले ही कितने भी ये ज्ञान में प्रतिबिंबित हो, ये में रस नहीं है ज्ञान को, ज्ञान में निज आनंद का, निज ज्ञान का, निज चैतन्य का, निज अमृत रस का जो स्वाद है आस्वाद है, उसमें उसका लीनता है, उसमें उसकी एकाग्रता है, जो ये झलक रहे हैं वो उपयोग में है या नहीं है, उपयोग में है कोई आपत्ति नहीं।
विषय में अंतर नहीं, अंतर नहीं है तो विषय में अंतर कैसे कहा?
अच्छा, ये बात ऐसे चली थी कि भाव आसन के काल में जो अपना स्वरूप विषय होता है वैसा का वैसा प्रत्यक्ष अनुभव के काल में लीन होने के काल में विषय होता है, विषय एक सा होता है। विषय में अंतर उतना है कि स्वविकल्पात्मक ज्ञान की स्थिति में, यानी परोक्ष ज्ञान की वैचारिक भूमिका वाली स्थिति में विषय हुआ है, ये निर्विकल्प अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान में विषय हुआ है। विषय करने वाले की स्थिति अलग अलग हुई है, लेकिन दोनों ने एक ही को विषय किया है। उसको ये पता चलता है अनुभव से बाहर आने के बाद कि जैसा मेरे भाषण में आया था उसका मुझे लक्ष्य रहा करता था और उसकी महिमा में रहती थी, उसमें इस महिमा के आगे बढ़ते बढ़ते ऐसी महिमा हो गई कि महिमा में राग था भी ज्ञान भी था, राग का नाश हो गया, ज्ञान की विकास हो गया, एक का अभाव हो गया, एक का सद्भाव बढ़ गया और इस दिशा में हम आ गए। लेकिन हमारे उसी ज्ञान में और उसी ज्ञान का विषय में कोई अंतर नहीं है, ऐसा साफ समझ में आता है। अगर अंतर हो गए तो ये सही निश्चय नहीं है, कुछ इसमें भ्रम का प्रकार है। लेकिन वहां भ्रम हो गए तो उसको प्रतिभास नहीं कह सकते, और भ्रमित दशा में अगर आत्मा का लक्ष्य रह गए ये परिस्थिति भी नहीं होती और न कोई पुरुषार्थ का उत्थान होता है, न कोई महिमा आती है। ये विषय और भी कल चलेगा, यही विषय पहुंच देंगे आगे जा करके, क्योंकि बात तो बहुत सी बाकी है, कुछ आधे भी हम पहुँचे हैं, बहुत सी बातें हैं, इसी विषय को सही स्वरूप
जैसा
में सही आता है मिथ्यात्व अवस्था, ये निश्चय मिथ्यात्व अवस्था में होता है। ये तो गुरु ने कहा, इसलिए हमने पूरा परिग्रह पढ़ा के मना जम गया नहीं है, विकल्प का अभाव नहीं हुआ है, बाद में जम जाएगा फिर निर्विकल्प होगा, ये पहले वाली दशा है, ये बाद वाली दशा है, ये तो आया कभी है पूर्व की दशा है। मतलब ऐसा भाव भाषण होने वाले को कभी अंतर्मुक्त में भी अनुभव हो सकता है, कभी किसी को कुछ घंटा भी लग सकता है, कभी किसी को कुछ दिन भी लग सकते हैं। अगर पुरुषार्थ शिथिल अवस्था में उत्पन्न हुआ तो दो तीन महीना भी लग सकता है, लेकिन इसकी हद 6 महीने से ज्यादा नहीं है। ये षणमास वाला कलश है अमृतचंद्र भगवान का, ये तो हद हो गई 6 महीना, तो ये शिथिलता की भी हद हो गई, इससे ज्यादा नहीं है। बाद में कुछ अंतर्मुख के बाद हो सकता है, दूसरे विकल्प आ सकते हैं, उदय कार्य हो सकते हैं, उदय भाव में जाता है, उदय की उदय भाव परिणमन चलता है, प्रवृत्ति भी मन वचन काय के योग की हो सकती है, जो पुद्गल की है, किंतु लक्ष्य एक समय में नहीं छूटता। जैसे किसी का जवान पुत्र मर गया, 12वें या 13वें दिन में मिठाई उसको खिलाई जाती है, उन खाने के लिए तैयार नहीं है क्या, लेकिन उनको खिलाई जाती है, 200-400 आदमी आए सब खाएंगे, आपको तो खाना ही है, क्या वो मिठाई खाते खाते या कुछ बात करके हंस भी जावे? रुदन तो उतना चल नहीं सकता, जहां तक विस्मृत नहीं हुए वहां तक रुदन तो नहीं चल सकता, कभी हंस भी जावे, लेकिन जो भाव पड़ा है वो भाव में अभी रुझ नहीं आई है, वहां तक दर्द चालू है, अंतर में इसका दर्द चालू ही है,
वो उपयोग तो वहां लगा हुआ है, इसलिए
जी
वो उपयोग तो जहाँ लगा है वहां लगा है।
ऐसा है कि लड्डू खाने में उपयोग
खाने की उपयोग तो आया नहीं, खाने में उपयोग आ जाएगा उसको तो खाएगा,
खाने में उपयोग आ जाएगा उस वक्त भी उसका दुख है वो मिटने वाला
नहीं, ये बताइए
भले ही उपयोग जाए फिर भी दुख नहीं जाता, अनुभव को देख लीजिए, अनुभव को अनुभव से समझना, अनुभव से अनुभव को तर्क से नहीं समझना है, हमें अनुभव को अनुभव से समझना है, तर्क से नहीं, और हम इतना समझ बैठे हैं कि उपयोग है उतनी ही हमारे पर्याय है, ये हमारी समझ अधूरी है, उपयोग के अधिक हमारी परिणति चलती है, जिसमें दुख है या सुख है कुछ भी है, सिर्फ जितना उपयोग है उतनी पर्याय नहीं है, ये पर्याय का एक अंश है, ज्ञान के भी पर्याय का एक अंश है, साथ ही लब्ध परिणति होती ही है, और लब्ध उपयोगात्मक हो के ज्ञान के एक अखंड पर्याय है, लेकिन हमको परिचय है सिर्फ उपयोग का, अनुभव है सिर्फ उपयोग का, पर हमने लब्ध पर्याय का परिचय किया नहीं, अभ्यास किया नहीं, हमारी समझ इस दिशा में है नहीं, इसलिए हम मानते हैं कि जितना उपयोग उतनी हमारी अवस्था है, लेकिन उतनी बात वास्तव में नहीं है। तो ये तो लंबी छोड़ी बात है उपयोग युक्त की। तो जिसको भाव भाषण होता है उसको लक्ष्य वाली एक परिणति हो जाती है जो निरंतर चालू रहती है। स्मृति विस्मृति की अपेक्षा लक्ष्य को होती नहीं, ऐसी परिणति रहती है। और ये परिणति उतनी बलवान है जितना उपयोग बलवान वहां पर नहीं है। इसलिए हमारे जो भाववासन वाले जीव हैं उनके विकास जो है वो परिणति के अनुकूल होता जाएगा, उपयोग के अनुकूल नहीं होगा। इसलिए सन्निग्रसन आता है। और उपयोग भी एक सापर में नहीं जाएगा, ये भी लक्ष्य के अनुकूल बार बार छिटक छिटक कर आते रहेगा। ऐसा कोई नैसर्गिक रूप से परिणमन की परिस्थिति बदल जाती है और उसी के फल में ही सम्यक दर्शन और स्वानुभव आ जाता है। करना पड़ता नहीं है, आ जाता है। और एक प्रश्न है कि स्वयं सन्मुखता और स्व आश्रय में अंतर है क्या? यदि है तो क्या? कभी दोनों एक ही भाव में प्रयोग किए जाते हैं, कभी भिन्न भाव में भी प्रयोग किए जाते हैं। जैसे परिणति और उपयोग, तो परिणति में स्वसन्मुखता साधक दशा में धर्मात्मा को चालू रहती है, उपयोग में परसन्मुखता होती है, फिर भी पराश्रय नहीं होता। स्वसन्मुखता और स्वाश्रय के साथ संबंध जोड़ा जाता है, परसन्मुख उपयोग के साथ आश्रय का संबंध जोड़ा नहीं जाता और आश्रय होता भी नहीं। फिर भी भाव भाषण में स्वसन्मुखता कुछ अंश में हुई, ये तो कल चर्चा करेंगे बहुत अधिक। फिर भी वहां स्व आश्रय नहीं हुआ कि जिसके कारण से वो जम जाए, उपयोग स्वरूप में लीन हो जाए, जम जाए, जिसको हम आश्रय कहते हैं, ऐसा आश्रय वहां नहीं हुआ। लेकिन आश्रय होने का प्रयास और पुरुषार्थ चालू हो गया है, लेकिन इसकी सफलता प्रथम ही सम्यक दर्शन के पर्याय में आती है। इसके पहले वाले पर्याय को हम प्रयास कहेंगे, पुरुषार्थ कहेंगे। इस संबंधित तो वहां स्वसन्मुखता कुछ अंश में है, फिर भी आश्रय नहीं है। और ज्ञानी को तो परिणति में स्वसन्मुखता और आश्रय दोनों एक साथ है, इसलिए कभी एक साथ भी प्रयोग करने में आता है, कभी भिन्न भाव में भी प्रयोग करने में आता है। ये जो अंतर है वो बहुत सूक्ष्म अंतर है। प्रश्न है, अनुभव की शोभा द्रव्य से है अथवा द्रव्य की शोभा अनुभव से है, स्पष्ट कीजिए। हम तो द्रव्य हैं और हम ऐसे द्रव्य हैं स्वयं शोभित स्वयं से ही कि हमारी शोभा के लिए अनुभव की अपेक्षा है। ऐसे द्रव्य है कि जिसको निरालंबन निरपेक्ष जिसकी अनादि अनंत स्थिति है, ऐसे द्रव्य है। फिर कभी व्यवहार से ऐसा किया जाता है के अनुभव से इनकी और शोभा बढ़ती है। फिर भी वास्तव में जो मूल द्रव्य है वो शोभित है और अपूर्ण शोभित नहीं है, परिपूर्ण शोभित है अपने पूरे गुणों से। उसको एक समय की किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं है। सुवेन साहब कहते हैं कि अवस्था में निबोध अवस्था हो या सिद्ध अवस्था हो, दो एक्सट्रीम पॉइंट वाली अवस्था है, बीच में सब आ जाती है, कहने की आवश्यकता नहीं है। हमें कोई लाभ नुकसान नहीं है, चूंकि पर्याय का लाभ नुकसान की हद पर्याय की सीमा में है, इससे अतिरिक्त द्रव्य की सीमा में नहीं है। द्रव्य की सीमा में उसका प्रवेश नहीं, इसलिए जब हम द्रव्य हैं तो फिर हमें पर्याय की कोई चिंता नहीं। जब हम पर्याय हैं तो सारे विश्व की चिंता और आपत्ति खड़ी हो गई समझो। तो पर्याय मात्र, पर्याय जितना हम हैं तो बात खत्म हो गई, पर जब हम द्रव्य हैं तो पर्याय अपने स्थान में शोभित हो ही जाएंगी। मैं द्रव्य हूं ये भाव तो पर्याय में होता है और पर्याय शोभित होती है, तो ये द्रव्य से पर्याय की शोभा हुई। ये भी आपस में व्यवहार या भेद से कहा जाए तो बाकी स्वयं की शोभा पर्याय को स्वयं से है, न द्रव्य से है न गुण से है। तो कथन में तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन सोच समझ के कहे तो जो भी कहे वो सच है, बिना समझे कहे तो सच कहे तो भी झूठ है। पोपट दो पर दो को चार कहेंगे, एक और एक को दो कहेंगे, लेकिन पोपट का अंक गणित झूठा है, वो अंक गणित को समझता नहीं है, भले ही बोले मनुष्य की तरह। तो कथन से तो हमें कभी कोई तकरार झगड़ा करना नहीं है। कोई कैसा भी बोलता है हम तो इसकी समझ को देखते हैं, ये समझ करके बोलता है या बिना समझ बोलता है, बस उतना देख लो। फिर शब्द के ऐसा शब्द क्यों कहा, ये शब्द प्रयोग या नहीं होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए, ये कोई आवश्यकता नहीं है, समझ लो।
उसके विषय में आज से 2517 साल पहले भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ, जो हमारे 24 तीर्थंकर हुए हैं इसमें अंतिम तीर्थादिनाथ जो हैं वो महावीर स्वामी हैं, जिनके शासन में आज हम जो कुछ पाते हैं वो इनके शासन के में पाते हैं। देवलोक से भगवान पधारे उस मध्यलोक में, मनुष्य लोक में, और जो भी गर्व कल्याण से लेके भगवान को गर्भ में पधारने के पहले पहले 6 मास पहले ही पद्मवृष्टि होती है। मैंने जहाँ भी वो पधारने वाले हैं उस शहर में कहीं भी कोई दरिद्रता नहीं रहे। फिर जन्म होने से, आज के दिन जन्म हुआ चैत्र सुद 13, और जन्म कल्याणक मनाया गया देवों की ओर से। मेरु पर्वत पर जा करके जन्माभिषेक होता है। 30 साल की उम्र में भगवान ने दीक्षा ग्रहण की और करीब 12 वर्ष तक, 12.5 वर्ष तक मौन रूप में अपने ज्ञान ध्यान में जंगल में विचरते रहे। तीर्थंकर होते हैं अपनी दशा में, उपदेश नहीं देते, सिर्फ अपनी साधना में रहते हैं। और 42 साल की उम्र केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई। केवल ज्ञान होने के बाद जो दिव्य धनी खीरी यहाँ से ये धर्म प्रभावना की मुख्य प्रवृत्ति जो है भगवान के निमित्त से चालू हुई। करीब 30 साल तक, 72 वर्ष की आयु है भगवान के, काफी मात्रा में धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। आज भी भगवान के उपदेश की जो परंपरा चल रही है, यही कारण है कि इतने विशाल पैमाने में ये धर्म प्रचार हुआ था कि बहुत से अजैनी भी जैनी हुए। हजारों ने लाखों की तादाद में ये संख्या बनती है। और बहुत धर्म वैभव अंतर बाह्य दोनों प्रकार के, इतना तीर्थंकर देव पुण्य लेके आते हैं कि बहुत ही प्रभावना होती है। बहुत ही आत्माएं धर्म को पाती हैं, बहुत धर्मात्माएं मुनि दशा में आते हैं, और बहुत मुनिराज जो है वो केवल ज्ञान भी पाते हैं। बाद में ये जो देशना का उपदेश था, ये विषय शुरू शुरू में तो कंठस्थ रहा, बाद में ये ग्रंथारूढ़ हुआ। जब आचार्यों ने देखा कि अभी काल निकृष्ट हो रहा है, अवसर्पिणी काल है, और लोगों की, ज्ञानियों की, मुनियों की भी इतनी स्मृति नहीं रहेगी जितनी अभी हो रही है, तो ये भगवान की वाणी को ग्रंथारूढ़ करने का प्रारंभ हुआ। इसमें बहुत शुरू के जो हमारे वाङ्मयी शास्त्र है वो षट्खंडागम है। उस आगम के बाद फिर 2000 साल आज से पहले पहले भगवान कुमकुंद आचार्य ने ये प्रवचन सार समय सारादिक ग्रंथों की रचना की। और उसी प्रकार वो भगवान महावीर स्वामी की वाणी थी, यही चीज हमारे सौभाग्य से आज चालू है। भले ही ज्ञानियों का, मुनियों का, आचार्यों का शब्द हमारे सामने हो, लेकिन उनके मूल में जो बैठे हैं, इस बात के मूल में जो बैठे हैं, वो तो भगवान महावीर स्वामी अपने तीर्थाधिनायक हैं। उन्हीं की मूल देन है। और असल में जो हमारे ऊपर उपकार है, ये उनका वर्त रहा है। कुदरत के संयोग से, जैसा का पद्मचंद जी ने बताया कि पूज्य गुरुदेव ने भी ये जो उत्पत्ति का त्याग करने का पसंद, यही दिन को पसंद किया। भीतर में तो कुछ साल पहले ये निर्णय वो ले चुके थे, लेकिन गुरुदेव के उदय की परिस्थिति बहुत विचित्र थी। जिस संप्रदाय में उन्होंने दीक्षा ली, साधु पद स्वीकार किया, उस संप्रदाय में अपने संप्रदाय के सिद्धांत को ये चुस्त पालन करते थे। जिसने जितनी चुस्तता से दूसरे साधु पालन, एक तो इनकी बाह्य क्रिया में बहुत कठिन क्रियाएं वो करते थे, साथ ही इनकी वाणी भी ऐसी थी कि संप्रदाय में इनके व्याख्यान में बहुत लोग भरते थे। जैसे वो हमारे भावनगर से नजदीक में करीब 100 किलोमीटर पर उस बोटाद नाम का गांव है, उस संप्रदाय में बोटाद के कोई महाराज विराजी थे, इनके गुरु पद के नीचे दीक्षा ली, तो वहाँ इनका व्याख्यान हुआ पाशरे में। तो पाशरे का मकान क्या, आजू बाजू की गलियों में लोगों को बैठना पड़े, गलियों में रोड पर मंडप रखना पड़े, इतने लोग सुनने को आते थे। इनका बाह्य व्यक्तित्व तो था ही, ये तो अपने फोटो से आज मालूम पड़ते हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष देखा है कि जो बुढ़ापन में इतना इनका पर्सनालिटी था, तो जिस जवान उम्र में उन्होंने 21 साल की उम्र में दीक्षा ली थी, ये जो हमारा प्रसिद्ध प्रवचन वाला जो छोटा है जहाँ गुरुदेव प्रवचन करते दिखाई देते, ये तो 55 साल का है। 55 साल की आयु का ये कोच है जो हम शास्त्र में डालते हैं, वो इतना साधारण मनुष्य से भी एकदम हायर पर्सनालिटी वाला दिखता है। अंतर्बाह्य व्यक्तित्व के वो धनी थे, तो इतने लोग पीछे थे संप्रदाय में कि यहाँ से निकलने के लिए साधारण आदमी का काम नहीं है कि छूट सके। सुना है कि इनके संप्रदाय में तो इनकी मान्यता होने लग गई थी कि हम गांधी स्वामी को मानेंगे, इनका उपदेश सुनेंगे, इनका चरण स्पर्श करेंगे, तो हमारे संसार की कोई कठिनाइयां नहीं रहेगी, इतना पुण्य उदय हो जाएगा हमारा, मान्यता चल गई थी। और जब उन्होंने समयसार पढ़ने के बाद जब आत्मज्ञान हुआ, तो उनको सब पता चला कि ये मुनिपद है ये तो बहुत ऊंचे वाला है, हम तो उस पद में प्रवेश नहीं है और लोग हमें मानते हैं, ये तो अच्छा नहीं है, और ये वास्तविक बाह्य रूप भी नहीं है, अंतरंग भी नहीं है, ये परिस्थिति जब है तो हमें इसमें नहीं रहना चाहिए। जब उन्होंने अपने अगल बगल के मुख्य मुखिया को, जो सेठिये लोग सेठिया लोग आते थे, उनको बताया कि ये संप्रदाय है गृहित मिथ्यात्व का है, पाखंड है, हम तो यहाँ रहने वाले नहीं हैं, उनको तो दिगंबर आमनाय को स्वीकार किया कर लेना है, बाह्य में अंतर में तो हो ही गया है, बाह्य में भी कर लेना है, तो लोगों ने बहुत विनंती किया साहब ऐसा मत करिए, आपको जो भी शास्त्र पढ़ना है हम आपके लिए कोई पाबंदी नहीं रखेंगे, आप समय सार पढ़ सकते हो, दिगंबर का कोई भी ग्रंथ पढ़ सकते हो, कुछ कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, लेकिन हमारा संप्रदाय मत छोड़िए। संप्रदाय छोड़ने में बहुत दुख होगा लोगों को और कुछ विरोध भी हो जाएगा, दोनों बात बनने वाली है, अनुरागी भी होंगे और योग्यता अनुसार द्वेष करने वाले भी मिल जाएंगे, और ये जो बड़ा बमंडर चलेगा, तो ये तो हमारा अभिप्राय नहीं है। कृपया आप यहाँ रह करके जो भी करना हो कर सकते हैं, लेकिन गुरुदेव को ये मान्य नहीं था, उन्होंने सन 1991 में ये चैत्रास के दिन सोनगढ़ में ये भूपत्ति का त्याग कर दिया और प्रसिद्ध रूप से दिगंबराम नायक का शिकार किया। उस वक्त उनके पास सिर्फ 4 आदमी थे, सब हट गए। जो भी इतने पैमाने में लोग सुनने को आते थे सब हट गए। गुरुदेव ने इससे पहले अपने बड़े भाई को बोल दिया था कि आपने मुझे दीक्षा दिलाई है लेकिन मेरा आत्मा दूसरी बात कहता है, मुझे ये संप्रदाय खोटा लगता है, तो मैं तो परिवर्तन करना चाहता हूँ। मैं दीक्षा का त्याग कर दूंगा, भेष का त्याग कर दूंगा, आपको तो कोई आपत्ति नहीं। बड़े भाई ने को इतना विश्वास था कि ये जो मेरा भाई है जो भी करता है सोच समझ के करता है, बिना सोच समझ के कुछ नहीं करता है। मुझे उतना धार्मिक ज्ञान नहीं है, धार्मिक विषय में मेरा इतना कोई समझदारी नहीं है, लेकिन उन्होंने जो किया रोटी के लिए भी किसी के यहाँ जाने का था, वो व्यवस्था भी बिठाने की थी। बड़े भाई ने कह दिया कि कोई बात नहीं, भगवान की कृपा से अपने घर में रोटी की कोई कमी नहीं है, तुम घर पे आ जाना, एक कमरा बंद करके बैठ जाना, अपना आत्म साधन करते रहना, 2 टाइम रोटी खा लेना, कोई आपत्ति। फिर भी उन्होंने देखा कि 2-4 आदमी ऐसे भी हैं जो मेरा साथ छोड़ना नहीं चाहते, तो ऐसे 4 आदमी थे जो इनके साथ रहे। साथ रहे क्या, रात दिन वे जिस मकान में वो भूपति का त्याग किया सोनगढ़ में, उस मकान के बाहर ये चौकीदार के रूप में बैठते थे, क्योंकि संप्रदाय में विरोध बहुत हुआ। यहाँ तक कि हवाएं चली कि गांधी स्वामी का खून कर दो, मार डालो, अगर ऐसा बड़ा आदमी ये कहेगा कि स्थानकवासी संप्रदाय है वो पाखंड है तो हमारा तो सारा संप्रदाय साफ हो जाएगा। शायद उन लोगों को ये भय हो गया कि ये तो बहुत बड़ा आदमी लगता है, इतने व्यक्तित्व महान है, अगर संप्रदाय में लोग बदलने लगेंगे तो सारा हमारा संप्रदाय, हमारी जो गद्दी है वो खत्म हो जाएगी। तो हर एक संप्रदाय में क्या होता है, वेस्टेड इंटरेस्ट पीपल होते हैं। मैंने जिसको अपना स्वार्थ है, अपनी सत्ता, अपनी मुख्यता, ऐसे ऐसे लोग वही होते ही हैं, हर जगह होते हैं। तो ये बात इतने को सकता है, ये हवाएं चली थी तो ये जो 4 आदमी थे वो बाहर डंडा लेकर बैठते थे। अगर कोई आया आदमी कि स्वामी जी इधर है, कहाँ है, उनको दर्शन करने को बैठा, हम इधर बैठा, उसको बाहर बिठा देते, वो दरवाज़ा बंद करके जाते। पहले नाम ठान से पूछते कहाँ से आते हो, कौन हो, क्या है, कैसे आए हो, कैसे पता चला, कैसे ये इंटरव्यू पूछताछ कर लेंगे और फिर भीतर में जाए, गुरुदेव को निवेदन करे आपका ऐसा आदमी आया है या आने का इजाज़त है तो मैं आने दूँ। वैसे लोग आने लगे, वैसे गुरुदेव के बाह्य पुण्य बहुत थे तो फिर हजारों की तादाद में लोग आने लगे। जहाँ सिर्फ ये जंगल था वहाँ आज जितना ओरिजिनल सोनगढ़ है उतना ही सोनगढ़ दूसरा ज्वाइंट हो गया। इतने मकाने बने अपनी संस्था के, इतने मंदिर बड़े बड़े बने, आज तो एक सोनगढ़ हिंदुस्तान के नक्शे पे एक बड़ा तीर्थ जैसा दिखता है। इतने बड़े बड़े जिनालय हैं, 3 तो बड़े जिनालय हैं, आप तो आए होंगे, नहीं आए तो जरूर आना, स्वाध्याय भव है। और काफी मात्रा में वारों मास यात्री लोग आते हैं, हजारों लाख यात्री आज भी आते हैं। श्वेतांबर भी बहुत आते हैं क्योंकि पालीताना के रास्ते में ये पड़ता है, इसलिए ये लोग भी बहुत आते हैं। आज भी श्वेतांबर में से दिगंबर लोग बनते हैं, हमारे भामनगर में भी 8-10 फैमिली कन्वर्ट हो गए और भी होने जा रहे हैं। ये सब गुरुदेव का प्रताप है और वास्तव में भगवान महावीर स्वामी का प्रताप है। ये आज के प्रेजेंटेशन में संक्षेप में ये इतिहास आपको बताया। सम्यक दृष्टि को क्या टीवी देखने का विकल्प आता है? हो सकता है, उदय है तो उदय पर हो सकता है। वो सम्यक दृष्टि को इससे भी ये अशुभ भाव है और इससे भी ज़्यादा अशुभ भाव हो सकता है, होता है, लेकिन हमारी नज़र वहाँ नहीं होनी चाहिए। हमारी नज़र इनके सम्यक दर्शन पर होनी चाहिए। अगर हमें सम्यक दर्शन के प्रति कुछ आकर्षण हो तो बाकी परमात्मा का देख दोष देखने का न तो हमारा अभिप्राय होना चाहिए न तो हमारी वृत्ति भी होनी चाहिए। प्रश्न है, आत्मा अत्यंत महिमावंत पदार्थ है ऐसा आचार्यों ने बताया है, आत्मा के स्वरूप पर और प्रकाश डालेंगे। आत्मा अत्यंत या अनंत महिमावंत है और ये महिमा अपने गुणों के हिसाब से है और गुणों के सामर्थ्य से भी है। गुण भी अनंत है और एक एक गुण का सामर्थ्य भी अनंत है। लौकिक गुण ये नहीं है, लोकोत्तर गुण है। किस तरह इसकी महिमा आती है मैं एक दृष्टांत देता हूँ कि जैसे लौकिक में अगर किसी ने हमारा कोई नुकसान किया तो उस नुकसान करने वाले के प्रति द्वेष सहज रूप से मनुष्य को आता है, लेकिन अगर कोई ऐसे परिस्थिति में ऐसी परिस्थिति में द्वेष नहीं करे और सामने वाले को क्षमा का प्रदान करे कि भाई जैसा मेरा उदय है ऐसा हुआ है उसमें मैं तेरा कोई दोष देखता नहीं, प्रत्यक्ष तौर से तो ऐसा दिखे कि उसका अभिप्राय ही उनका नुकसान करने का था, उसका भाव भी उसको आया था और उसने नुकसान किया भी, वास्तव में उनका अभिप्राय बुरा हो सकता है, उनको बुरा भाव भी हो सकता है, लेकिन इसी कारण से हमारा बुरा हो ये परिस्थिति संभव नहीं है। जब पाप का उदय होता है तभी ऐसा हो सकता है, लेकिन सामने वाले भाव से कोई अच्छा बुरा नहीं होता है। फिर भी अगर लौकिक में कोई गुस्सा नहीं करके नुकसान करने वाले को नुकसान नहीं पहुंचाते, उसके प्रति क्षमा रख ले, कभी जैसा भी ये हुआ है वो तेरे कारण से नहीं हुआ है, वास्तव में मेरे कारण से हुआ है, तो लोग में तो एक इतना बढ़िया ये गुण दिखेगा कि देखिए कितना गुणवान आदमी है, जो बुराई करता है इसके सामने भी वो बुराई नहीं करता है, भलाई करता है। ऐसे लौकिक गुण को अलौकिक गुण के प्रकरण में अवगुण कहा जाता है, तो गुण कैसा होगा आई समझ में। लौकिक में जिसको गुण कहने में आवे, यही गुण को अगर दोष गिनने में आवे तो गुण का स्तर कितना, किस हद में, कितना ऊंचा होगा कि एक शुभ भाव है और ये शुभ भाव भी दोष है। ये शुभ भाव होने के बजाय वहां वीतराग भाव अगर हो गया और वीतराग ही उत्तम क्षमा हुई, जो हमारे दस लक्षण में पहला बोलाता है, उसको हम गुण कहते हैं। ऐसे परिणाम वालों को हम गुणवान कहते हैं और क्षमा और शुभ भाव को हम दोष में खटाते हैं। ऐसी एक ऐसे ऐसे वीतरागता जैसे लोकोत्तर गुण संख्या में अनंत है आत्मा में, और एक के गुण में सामर्थ्य अनंत है आत्मा में, इसलिए ये आत्मा महान है, इसकी महत्ता अनंत है, इसकी महत्ता की कोई हद नहीं है, उतनी है। एक एक गुण की इतनी महत्ता है, अनंत गुण की तो अनंत है ही। तो इस तरह से आत्मा की जो महत्ता है वो तो इस तरह से है। पुराने जमाने की एक बात सुनी है कि विधर्मियों के साथ भी जैनाचार्यों का, जैन मुनियों का विवाद होता था, शास्त्रार्थ होता था धार्मिक। तो ऐसा सुना है कि गुण के संबंध में जब चर्चा चलती गुण दोष के विषय में, तो अन्य धर्मी जो अपने संप्रदाय के हिसाब से, अपने क्रियाकांड के हिसाब से, अपने सिद्धांत के हिसाब से जो गुण को बताते हैं, बताते थे, उनको जैनाचार्य क्या उत्तर देते थे सुनने लायक बात। तो कहते थे कि क्या बस यही आपका जवाहर है, जवाहरात गहने, आपके तिजोरी में यही रत्न है? हाँ, बहुत बड़े बड़े रत्न हैं, देखो ये है, वो है, वो है। मैंने सब बात लोग की दूर की आएगी, देखे अन्य मत में कहीं भी शुभ भाव से आगे कोई परिस्थिति नहीं है। तो फिर जैनाचार्य कहते थे कि ये तो कांच के टुकड़े हैं, वास्तव में ये रत्न है ही नहीं। जिसको तुम रत्न मान करके तिजोरी में रखते हो, ये तो कांच के टुकड़े हैं, और वैसे तो झूमर के झूमर हमारे यहाँ लटकते हैं, हम सामने भी नहीं देखते कि कितने हैं क्या है। हमारी तिजोरी में कोई रत्न है तो ये दूसरे किस्म के हैं, दूसरी जाति का है, तुम देख इसको। तो उतना अंतर है लौकिक और अलौकिक। इसलिए इस जैन धर्म के अलावा विश्व के सभी धर्म लौकिक धर्म में जाता है। ये कोई अलौकिक धर्म है, लोकोत्तर बात है, लोक में प्रचलित भी नहीं है। ये भीतर में लोक में क्या संप्रदाय में आज प्रचलित नहीं है। एक केकड़ी के विद्वान मिले थे मुझे परसाल, तो करीब लास्ट जुलाई में यहाँ ऐसे मिले थे अहमदाबाद में। तो वीतरागता और शुद्धोपयोग के विषय में लोग काफी अनजान थे। वो यही कहते थे कि नौ तत्व के श्रद्धा को हम सम्यक दर्शन कहते हैं, और शास्त्र संबंधित जो भी व्यवहार निश्चय आदि नयों के विषय में जो भी ज्ञान है, यही आत्म वही सम्यक ज्ञान है, और व्रतादि का पालन यही चारित्र है, पंचमहाव्रत आदि लेते हैं। वो ताज्जुब हुआ कि ये वीतरागता, शुद्धोपयोग, ये बात दिगंबर जैन के पंडितों में ये बात नहीं है। ये बात तो बहुत आश्चर्य में लगती है। जब हमें ये पता चला कि ये काफी पढ़ा लिखा है, धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन करता है, फिर वीतरागता बात का तो बात आओ तो सभी जगह वो शुभ राग को ही खता है। काफी घंटा भर चर्चा चले, तो हमें यहाँ से एक विकल्प हुआ कि वास्तव में जिन शासन क्या है, यही बात जब हमारे दिगंबर संप्रदाय में ही प्रसिद्ध नहीं है तो फिर दूसरे संप्रदाय वाले तो हमारी बात को कैसे समझे। और यहाँ पर ये बात की अनजानपना हो, अपरिचित हो, बहुत स्वाभाविक है। इसी कारण से हमने ये जीन शासनम सर्वम का संकलन किया और इसके प्रारंभ में उपदघात में ये सारा हिस्ट्री बताया है कि जीन शासन भगवान महावीर स्वामी से लेकर अब तक जो गुजरा वो किस परिस्थिति में गुजरा, कैसे वो कमजोर हुआ, कमजोर होने का क्या क्या कारण हुआ, इसका संक्षेप में बयान दिया। फिर आखिर में एक बात लिखी है जो 15 गाथा में कुमकुंडाचार्य देव ने लिखा है कि जो पसदी पाणम अवधम स्पष्टम, जो पसदी जीन शासनम सर्वम, ये जीन शासनम सर्वम, ये भाव जीन शासन किसको कहते हैं, यही वास्तव में वीतराग का सदोपयोग, यही भाव जीन शासन है, इस बात की चर्चा अंत में किया है। और इसी पुस्तक को हमने काफ़ी मात्रा में सारे भारत में करीब 3000 कॉपी फ्री ऑफ चार्ज कोर्स से भेजी है। जो भी विद्वान लोग हैं, त्यागी हैं, मुनि हैं और धार्मिक नेताएं हैं, जो भी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, उनको हमने भेजी है। इसलिए कि वास्तविक बात क्या है, संकलन तो उतना ही है कि गुरुदेव जी शासन किसको कहते थे, शुद्धोपयोग वाले कैसे होते हैं ज्ञानी और मुनि, इस विषय में उनका स्टेटमेंट क्या है, क्या कथन किया उन्होंने। और पूज्यबेंसरी ने क्या क्या कहा, कैसा कहा, श्रीमद रायचंद जी ने क्या क्या कैसा कहा, इस विषय में सोगान गुरु ने कैसा कैसा क्या क्या कहा। ये शुद्धोपयोग जो वास्तव में जिन शासन है उसी सब्जेक्ट को अलग करके उसको संकलित कर दिया है और उसका टाइटल दिया है जीन शासन समूह, यही समस्त जीन शासन है। इस तरह ये विषय आत्मस्वरूप का इतना महान होने पर भी काल क्रम में वर्तमान में इसकी परिस्थिति बहुत दयनीय है, दयाजनक है, दया के योग्य हैं, दया के पात्र हैं। ये परिस्थिति में हमें बहुत सावधानी से, गंभीरता से, विवेक से चलना है, बाहर में भी अंतर में भी। अगर हम हमारे सिद्धांत को छोड़ देंगे तो हमारी संस्कृति टिकने वाली नहीं है। ये चलता है लेकिन मेरा मन थोड़ा इधर रहता है तो वाइब्रेशन भी उस साइड कम जाता है। अपने जो सिद्धांत हैं मूलभूत सिद्धांत हैं, किसी कीमत पे हमें उसको छोड़ना नहीं चाहिए। जिन्होंने सिद्धांत छोड़े उसकी संस्कृति में ह्रास हुआ है, तो कमजोर हुए हैं। ये सभी संप्रदाय के इतिहास बोलता है, हमारा संप्रदाय का इतिहास भी वही बोलता है। जैसे कि 1500 साल पहले श्वेतांबर लोग दिगंबर में से निकले हैं, तो जो भावलिंगी संत थे उनके अनुशासन में जो उन्हें लोग नहीं रहे, उन्होंने ये कहा कि कुछ द्रव्य क्षेत्र काल भाव में फर्क हुआ है, 12 साल तक दुष्काल चला है, इसलिए हमें कुछ सिद्धांत को से हमारी पकड़ ढीली करके कुछ न कुछ चलाना चाहिए। अर्धफालक के नाम से ये संप्रदाय चलता हुआ। अर्धफालक मैंने छोटा सा टुकड़ा गुप्तांग को ढकने के लिए, एक गोचरी करने के लिए, नगर में आते थे, शहर में आते थे। वास्तव में ये चारित्र का दोष नहीं है, दोष तो पहले श्रद्धान में हो गया था और चारित्र में, और चारित्र के हद तक वो पहुंच गया दोष। तो यहाँ से जो चालू हुआ आज इतनी हालत खराब है ये संप्रदाय के बात हम नहीं कर सकते, करने लायक होते हैं। चार में चार अंक होते हैं, ज्ञानियों का एक ही मत होता है, अनंत ज्ञानियों का। इसलिए अगर इनके अनुशासन में रहें तो थोड़ा बहुत कुछ टिक पाएंगे, वरना तो आगे हालत बिगड़ने वाली ही। जो बात दुख की है कि ये हालत अच्छी नहीं रहेगी, ये बात दुख की ही है, और केवल ज्ञान के अनुसार तो ये होने वाला है। इसलिए हमें जैसे कैसे भी समाधान करना पड़ेगा, करना पड़ता है। हम ये नहीं चाहते हो, ये इच्छनीय नहीं है, अनिच्छनीय है। बताइए, 14 मारना कई है शास्त्रों में। ये 14 मारना मैंने जहां से जीव का अस्तित्व हम निश्चित कर सकें, खोज सकें, जिस मार्ग से, ऐसे 14 गुण को 14 मारना कहा है। जैसे ज्ञान मार्ग, जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ आत्मा है, जीव है, ऐसे ऐसे 14 मारणाएँ हैं। ये मारणा का महत्व, जिसको जीव की का अस्तित्व के विषय में शंका होती है कि जीव है या नहीं है, ये कोई मशीनरी है कि कभी बंद पड़ जाती है, कभी खराब हो जाती है, उसको ठीक करते हैं तो चालू हो जाती है, और कभी तो बिल्कुल बंद हो जाती है। ऐसी बात नहीं है, जीव का अस्तित्व वहाँ होता है। उसको बताने के लिए मारणाओं का विषय लिया है शास्त्रों में। सूतक माने या न माने दूसरा प्रश्न है, बताइए। सूतक मानना नहीं मानने का सवाल नहीं है, अपने घर में तो मानना, दूसरों के दूसरे जाने। लेकिन ये प्रश्न जो है
वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। कर्ण लब्धि शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। कर्ण मैंने साधन, साधन को कर्ण कहते हैं। कर्ण नाम का गुण भी है, कर्ता गुण है, कर्म गुण है, कर्ण गुण है, जो षटकार को कहते हैं उसमें कर्ण मैंने साधन, आत्मा में अपना प्रयोजनभूत कार्य की सिद्धि के लिए साधनांतर की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि अपने आत्मा में कर्ण मैंने साधन नाम का गुण है। उत्कृष्ट साधन अपना आत्मा ही है, ये कर्ण मैंने साधन इस गुण का भी नाम है। और सम्यक दर्शन के पहले ये जो कर्ण लब्धि ऐसा शब्द है, ये लब्धि मैंने प्राप्ति, साधन की प्राप्ति, वह ऐसे सूक्ष्म परिणाम होते हैं कि जिस कारण से तुरंत ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति और स्वानुभव की प्राप्ति होती है। ऐसे परिणाम विशुद्धि की परिस्थिति देखकर भगवान ने इस परिणामों का नाम करण लब्धि ऐसा दिया है। केवली गम्य परिणाम है, छद्म स्तंभ पे अपने को खुद को भी गम्य नहीं होता। संघ का दोष चारित्रिक से संबंध रखते हैं, चारित्र गुण के साथ संबंध रखता है, या इसका संबंध श्रद्धा से होता है, ऐसा एक प्रश्न है। संघ का दोष में मुख्यतया इसका संबंध श्रद्धा से है, चारित्र से तो है ही क्योंकि बाह्याचरण है, लेकिन मूल में ये श्रद्धा को स्पर्श करता है। जिसका दर्शन मोह तीव्र होता है उसको इस विषय में विवेक नहीं हो पाता, जिसका दर्शन मोह का मंद होता है उनको अच्छी तरह विवेक होता है कि मुझे इसका संग करना है या नहीं करना है। तो इसलिए इसका मुख्य संबंध है वो श्रद्धा के साथ हैं, फिर गौण रूप से चारित्र के साथ भी है। इसलिए जिसको अपने श्रद्धा को ठीक करनी है या मिथ्या श्रद्धा मिटानी है, यानी उसको अपने हम किसके संग करते हैं इस विषय में काफी गंभीरता से इसका विचार करके ही आसन करना। ये बात मामूली है, ऐसे नहीं रखना चाहिए। दुनियादारी का तो जो संग है वो ऐसा संग है, उसका तो संक्षेप कर ही लेना चाहिए, लेकिन धार्मिक क्षेत्र में भी सबके सब संग करने लायक नहीं होते, इसलिए सोच समझ करके बहुत गंभीरता से किसी के भी संग में जाना, वरना कितना नुकसान होगा कहना बहुत मुश्किल है।
ये श्रद्धा को कैसे छूता है, ये श्रद्धा को कैसे स्पर्श करता है?
श्रद्धा को इस तरह स्पर्श करता है कि मुमुक्ष जीव को तो पहले सम्यक दर्शन होना, दर्शन बंद होना चाहिए, दर्शनों का अनुभाग जो है इसका घटना चाहिए, कटना चाहिए। ये दर्शनों के अनुभाग को बढ़ाता है। इसलिए जो संघ के विषय में ऐसा विचार नहीं करता, इसका मतलब ये है कि नहीं करने लायक ऐसे जीवों का संग करने की रुचि रहती है, प्रीति रहती है तो संग करता है। तो सम्यक दर्शन तो गुण की रुचि में उत्पन्न होने वाला है और दूषित जो है, जो दोष वाले हैं, भले ही दोष वाले हों, हमें क्या, किसी न किसी कारणवश या अपेक्षावश हम इस विषय में विवेक विचार नहीं करते तो अगले का दोष को पोषण मिलता है, अनुमोदना मिल जाती है और दोष का करना, करवाना या अनुमोदना इस लाइन में, गुण का करना, करवाना और अनुमोदना से हम खिलाफ जाते हैं, विरुद्ध जाते हैं। इसलिए जो गुण दृष्टि स्वभाव दृष्टि, मैंने गुण दृष्टि, गुण दृष्टि मैंने स्वभाव दृष्टि,